ہمارے تمام آئے ہوئے انرجی مہمانوں کا جو باہر سے آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے. میرے عزیز دوستو, اس وقت موجودہ جو حالات ہیں ہمارے بلوچستان کا, یہ کسی سے لکھی چھپی بات نہیں ہے. جہاں جو امریکہ ہمارا جو اپنا تسلط چاہتا ہے, یہ آپ بخوبی تمام سیاسی ورکر ہیں, لیڈر ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اور جو امریکہ کرنا چاہتا ہے, اور امریکہ یہاں اپنا ٹھکانہ بنا کر پورے امت مسلمہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. میرے عزیز دوستو, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس میں امریکہ کے حمایت میں, یعنی امریکہ کے ہم دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کو سپورٹ دے رہا ہے ہمارے پاکستان اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ جو بلوچستان کے حالات پیدا کیے گئے, ظاہر ہے ہم بلوچستان کے لوگ قبائلی لوگ ہیں اور ہمارے رسم رواج قبائلی بھی ہیں, اور آج تک تاریخی حوالے سے میں گزارش کروں کہ بلوچستان کے سرزمین کو زور سے کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے, نہ کر سکے گا. اور انہوں نے جب آپ بلوچستان کے فرزندوں کو ڈرنگ مشین کے ذریعے جو ہے نا اس کو سوراخ کر کے سروں پر, اور لاشوں کو جو ہے نا بے حرمتی کر کے آپ جنگلوں میں پھینکتے ہیں, مہینوں کے مہینے سڑ جاتے ہیں, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس طریقے سے عمل لا سکتے ہو؟ اس طریقے سے آپ بلوچستان کے عوام کے دل جیت سکتے ہو؟ کبھی نہیں. اور اس قسم کے حالات جو پیدا کیے جا رہے ہیں, اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کوئٹہ کے حالات آپ دیکھیں, مستوں کے حالات آپ دیکھیں, یہاں کے ہمارے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو, کچھ نہیں ہو رہا ہے. میں ہماری کوشش ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا کہ ہم متحد ہو جائیں, اور اپنے اصل دشمن جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے خطرناک دشمن جو ہے اس وقت ہماری, وہ امریکہ ہے. ہمارا ہدف امریکہ ہونا چاہیے, ہمارا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو گولی کا نشانہ بنائے. اور یہ جو کچھ کوئٹہ میں ہو رہا ہے, جو شیعوں کو قتل عام ہزاروں کو کیا جا رہا ہے, میں دعوے سے چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس میں ایجنسیوں کے ہاتھ ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں, اور آل علماء کو شہید کیا جا رہا ہے, اس طرف سے معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, وہ اس آگ کو مزید بھڑکانا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہمیں اپنے قائدین پر فخر ہے, اور ہم فخر سے یہ کہیں گے کہ امریکہ کے تمام چالوں سے اچھی طرح واقف ہیں, اور انشاءاللہ ہم, میں ان دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے علاقے میں پہلے بھی ایسے پروگرام ہمارے ہوتے رہتے ہیں, اور ہم ان کا ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہے, اور انشاءاللہ ہم ایک ہیں, ہم میں کوئی فرق نہیں. لیکن سب سے بڑی دشمن جو ہمارا ہے, امریکہ کا مقصد ہے, پہلے بلوچ اور پشتون کو جھگڑا کرنے کا ان کا منصوبہ تھا, لیکن اس کو جب ناکامی ہوئی, اب مذہبی جماعتوں کو آپس میں لڑا کر تاکہ جو ایران کا حصہ بلوچ ہے اس کو اور اس بلوچستان کو اکٹھے کیا جائے, اور یہاں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے. یہ بلوچوں کا بھی خیر خواہ نہیں ہے, یہ صرف اپنے لیے کرتا ہے. کل یہی بلوچوں کو یہاں جو ہے نا مارا جائے گا, اس سے بھی بدتر ان کا حالات ہوگا. ہم کہتے ہیں میرے عزیز دوستو, ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو, انصاف ہو. یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم سیاسی ورکر, سیاسی قائدین مل بیٹھ کر کے آپس میں محبت کی جو ہے نا بڑھائیں گے, ایک دوسرے سے ساتھ دیں گے, ایک دوسرے بیٹھیں گے. اور انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے, اب اس چیز کو ہر ایک نے ہمارا سمجھا ہے, اور ہر بچہ بھی سمجھا ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. ہمارا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی جو خطرناک ہمارا دشمن امریکہ ہے, ہمارا ملک کا دشمن, ہمارا اسلام کا دشمن, ٹھیک ہے, ہمارے جو ہے قومیت کا, ہماری غیرت کا جنازہ نکالنے والا امریکہ ہے. تو ہم آئیے مل کر کے آپس میں اتفاق اور اتحاد کو مزید فروغ دیں. اگر اس ملک کو ہم سمجھیں گے اگر بچانا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک ہی صورت ہے کہ अमेरिका के साथ मुकाबला करना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी और इंशाल्लाह हमारे मुल्क की होगी और हमारे मुल्क की भी पता ऐसी में है कि आप नौजवानों को बजाए उनके लाश भेजने के या उनको पहाड़ों पर मजबूर किया गया, असल असबाब क्या है, क्यों ऐसा किया गया। तो इन चीजों पर अगर हम सोचे हर वक्त बलोचिस्तान के अवाम पर मुल्क बलोचिस्तान पर वार किया गया, चाहे अयूब खान का दौर हो, चाहे हमारे पीपल्स पार्टी के दौर नाराज न हो, भुट्टो साहब का दौर में भी हमारे लाशें गिराई गई बलोचिस्तान की, अब भी हमें लड़ाया जा रहा है। तो अगर असबाब क्या है, ये सब है बैरूनी कुव्वतों की यानी कोशिश है, चाहे इंडिया है, अमेरिका है, इसराइल है, जब तक हम इनको अपना सही दुश्मन नहीं समझेंगे और हम इनके खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को खत्म करें, जाती मुफादात, पार्टी के जाती मुफादात इलाकाई सतह पर अगर हम खत्म करें, खुदा की कसम हम हमारे ये दुनिया जो लड़ जाएगा हमारी इताह से। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमारे कायदीन बैठे हैं तो अफसोस भी होता है, हम लोगों को अपने आप पर रोना आता है कि हम लोग इस मुल्क के इस अपने सरजमीन की हिफाजत नहीं कर सकते, हम अपने इस्लाम की हिफाजत नहीं कर सकते। हम अगर खुद को कहें बलोच है तो बलोचियत क्या है, इस्लाम के और बलोच के एक दूसरे से वो मिलते हैं यानी सकाफत। अब देखकर इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना हुजूर इस्लाम की सुन्नत है, बलोच इस पर फख्र करता है, असला रखना हुजूर इस्लाम की सुन्नत है, बलोच अपना शान समझता है असला रखना अपने घर पे, पर्दा इस्लाम के अंदर सुन्नत है और पर्दा बलोच का यानी शान अपना समझा पर्दे को। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमें इन चीजों से पता चलता है कि हमारे तारीखी हवाले से हमारे इस्लाम के साथ मोहब्बत रहा है और जब तक हम इनके लिए कोशिश नहीं करेंगे इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, तो नामुमकिन है कि हम इन जालिमों से बचे। और सबसे बड़ी मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि इन्होंने बार बार ये जो है प्रोग्राम करते हैं और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आइंदा अपने सतह पर या अपने मकामी सतह पर। और खुसूस मैं इलामा साहब का भी मशहूर हूँ, पहले राजा साहब आए थे हमारे इलामा तो मेरे पास आए थे, मैं इतना ही मुझे खुशी हुई और इंशाल्लाह मैंने तो दोस्तों को कहा था कि जब भी आपके मरकजी रहनुमा जहाँ तशरीफ लाए आप कभी हमें टाइम दे दे हमारे साथ खाना या चाय के लिए, लेकिन ये क्यों पता नहीं कि ये दिल छोटा करते हैं, पर ऐसे नहीं है, आप हमें जहाँ हुक्म करें हम आने को तैयार है। तो ये हमारे भी मेहमान है, हमारा ये ईमान है, अगर आपके जैसे मेहमान है हम बढ़कर इंशाल्लाह ये कहेंगे हमारे मेहमान है, हमारी इज्जत अफजाई होनी चाहिए। और मैं अपने कायदीन का आए हुए दोस्तों का मशहूर हूँ, अस्सलाम
का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्याल में ये दूसरा प्रोग्राम है पीसी के हवाले से जो हमारे शहर में मुनक्कद हो रहा है। मैं मरकज की बात या मुल्की लेवल की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि तमाम पार्टी और तमाम मजहबी पार्टियों को मिलकर और नहीं तो अपने इलाके अपने शहर के लिए उसकी फलाह बहबूद के लिए काम तो करना ही है। हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहे एपीसी के हवाले से, शहरी एतात के हवाले से, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेट ने उन ताकतों को ख़त्म करने के लिए आज तक चालें चलते रहे हैं, कुछ दोस्त उसमें इस्तेमाल भी होते रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम अपने शहर के वसीतर मुफाद के लिए जब ये इतिहाद बनाते हैं, आल पार्टी एपीसी वगैरह बनाते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि अपने इलाके अपने सूबे और अपने मुल्क के फलाह बहबूद के लिए काम करें। मेरा तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि तमाम इख्तलाफातों को भुलाकर हम अपने इलाके की वसीतर मुफाद के लिए काम करें। जब तक हम अपने इलाके की वसीतर मुफाद के लिए काम नहीं करेंगे या सोचेंगे नहीं, तो हम सूबे के लिए भी नहीं कर सकते हैं, तो मुल्क के लिए नहीं कर सकते हैं। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस प्रोग्राम में दावत दी। वसलाम
डॉक्टर साहब, मौलाना डॉक्टर साहब से अक्सर मुलाकात होती रहती है, वक्त पर उनकी मेहरबानी है कि वो ये तशरीफ लाते हैं और मुलाकात भी हो जाती है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं तहरीक इबादतुल मुस्लिमीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फवक्तन इधर लोगों को यकजा करने के लिए, इंसानियत का दर्स देने के लिए कुछ बातें हमको, हम अब उनसे सीखते भी हैं कि वो इतनी दूर से तशरीफ लाते हैं और कुछ हम उन्हें अपने मसाइल बयान करते हैं। और मैं तमाम जमायतों से, जितने भी उनके नुमाइंदे इधर मौजूद हैं, कि मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो इस कमी को दूर करें, वो भी इन हालात को, इन मसाइल को, जो आजकल, क्योंकि आज का ये मजलिस जो है वो उसका उन्वान तो है बलूचिस्तान में अमन अमान और माशरती मसाइल क्या हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं हालात, कहाँ जा रहे हैं क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करूँ। मेरे मौजूद सामईन जो आप तशरीफ रखते हैं, वक्तन फवक्तन हमारे इजलास होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं और अच्छे अच्छे इश्यूज पर हम लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी दलाइल देते हैं। मैं थोड़ा सा तवील आपका मामूली वक्त लूँगा, जिसके लिए मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ। मेरी गुजारिश ये होगी, हम क्लिप बहुत अच्छे मसाइल पर डिस्कस करते हैं, आपकी मजबूरी नहीं है कि मुझे सुने, ये भी आपकी मजबूरी नहीं है कि आप मेरी बात कही हुई को आप उसकी पाबंदी करें, मगर हम लोगों में इतना ज़र्फ ज़रूर होना चाहिए, कोई अच्छी बात हो उसका साथ देना ज़रूरी है, एक बेहतरीन इंसान का काम। आज हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, किसी दोस्त ने जिक्र किया कि बलोचों के ऊपर अयूब खान के दौर से जुल्म हो रहा है, इससे कोई ऐसी ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। अयूब खान के दौर की जंग, भुट्टो साहब के दौर की बमबारी और आज फिर पीपल पार्टी की हुकूमत आज जो हमारे साथ हो रहा है, पहले हमारे ऊपर पहाड़ों से पहाड़ों पर लड़ा जाता था, आज गली कूचों में बेगुनाह इंसान जो जहाँ से गुजरता है। ये मेरे नबी करीम की हदीस पाक आपको बयान करूँगा जो मुझे इस वक्त याद आई है कि क़यामत की निशानियों में ये भी एक निशानी होगी, मरने वाले को ये पता नहीं होगा कि मैंने किस जुर्म की सजा दी जा रही है, मेरी जिंदगी छीनी जा रही है, और कत्ल करने वाले को ये पता नहीं कि मैं क्यों शहीद इसको शहीद कर रहा हूँ। मेरे भाइयों क्या हो रहा है आपके बलूचिस्तान, पहले तो जंग की चलो जो पहाड़ पड़ता था वो तो अब वो कर रहा था, उसके साथ बंदूक थी तो किसी को मार रहा था, वो मुकाबले के लिए तैयार था, अब जो ये निहत्ता इधर से एक पता ईरान ज्यारत के लिए जाता है और कहीं जाता है, इसको किस जुर्म की पादाश में आप कत्ल कर रहे हैं। मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, कल से सब्जी खरीदनी है, सोना सिर्फ खर्च रहा है कि अपने मेरे बच्चे भूखे या उनको जरूरत है, मैं उनकी जरूरत पूरी करने के जा रहा हूँ, मुझे कत्ल कर रहे हो, मैंने आपका क्या जुर्म किया। सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी आपको मुसलमानों, इस स्टेज पे जो खड़े हैं मुसलमान की हैसियत से खड़े हैं, हम किसी फिरके से कोई नहीं, हमारा ईमान है सिर्फ इतना है, हम इतने मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ये कलमा पढ़ता है वो सब हम भाई हैं, हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे इस कलमे की बुनियाद पर। हमें हमारे नबी ने ये रास्ता बताया कि मुसलमान तुम पर दूसरे मुसलमान का कत्ल हराम है, हम वही कर रहे हैं कि नबी ने रोका है मुसलमान मगर इसको मार, है भी मुसलमान इसको मारना है, इसको मुसलमान होने की सलाह देनी है। कब तक ये सलाह भुगते रहोगे, उसके लिए मेरी तजवीज होगी कि हमें सबको मुसलमान बनना पड़ेगा। मुसलमान बनने के लिए आप नमाज पढ़ जाते हैं, बेवजू जा सकते हैं आप, बेवजू नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमानों, मुझे जरा बता दो। नमाज पढ़ने के लिए आप पहले उसका वजू करेंगे, फिर वो अमल करेंगे जो नमाज के लिए आपके लिए हमारे लिए हुक्म है, उसका एक तरीक़ेकार होता है, अगर उस अमल से आप नहीं गुजरेंगे तो आपकी नमाज कैसे होगी, आपके सज्दे कैसे वो कबूल होंगे, आप सुभान रब्बिल आला कैसे पढ़ेंगे। किसने आपको कहा है कि मुसलमानों के दरमियान फिर के बाजियों में एक दूसरे को कत्ल कर दो, किस हदीस में मुझे वो हदीस को दिखाओ, किस आलिम की किताब में, किस फाजिल की किताब में, किस मौर्रख ने लिखा है ये बात,
किस वजह से कर रहे हो? सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि हम बेहतर मुसलमान बनने के लिए, हुजूर की सुन्नत और उसके अहकामात को मानने के लिए सबसे पहले हमें बावजूद होना पड़ेगा, हमें अमल करने पड़ेगा, हमें अमल की कमी है। अच्छा वजह क्या है? इतनी एपीसी है, हम सारे बैठे हैं, हमारे लड़ने की बुनियाद क्या है? किस मकसद के लिए हम एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं? दावा तो है मुसलमानों का। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी इंसानियत तो यह है, कल हमारा इधर का बेहतरीन सियासी समाजी एक बूढ़ा सुबह रीशे के इंसान जो है वो इस जहां से चला गया, हम सब ने जाना है। उसने हमारे और आपके हकूक के लिए इसी रोड पर अपनी जिंदगी गुजार दी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए। क्या एक दुकान आपने बंद की? क्या आप शहर वालों की जिम्मेदारी नहीं की जितने सारी उम्र आपकी खिदमत की? क्या बाबा घर पर गोला का इतना भी हक नहीं था कि हम सब बात जबात पूरे शहर वाले जाकर उसकी जबान जलाना भी शुरू करते? क्या वो बद किरदार था, कोई एक बता उसके बता दे? क्या वो राशन की बोरी के लिए भाग रहा था कहीं? मेहरबानी करो, हमें अमल करना पड़ेगा अच्छे इंसान बनने के लिए। हमें जो है अपना जमीर को ललकारना पड़ेगा। मुसलमान का जमीर होता है ये वो जमीर था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर्बला के मैदान में कोई दलील नहीं थी, आज एक रात की रोटी नहीं मिलती। मौला मैं ये मेरी मजबूरी आज का अच्छा दलील देता है, मेरे मालिक में मजबूर था, मुझे आज की पौड़ी चाहिए थी तो मैंने जी एस सी की बैयत कर ली। एक हाथी की पौड़ी के लिए मदद कर रहे हो, अपना ईमान फरोख्त कर रहे हो, यह दलील इससे बड़ी दुनिया में क्या दलील होगी? अली अकबर कत्ल हो रहा है, कोई दलील नहीं है। मेरे मौला मैं हाजिर हूँ। अली असगर शहीद हो रहा है, मौला मैं हाजिर हूँ। दुनिया में कासिम शहीद हो रहा है, मौला मैं हाजिर हूँ। और कुर्बानी मांगो क्या है? हुसैन 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 आखिरी सजदा दे रहा है, जब आखिरी वक्त आ रहा है भी सजदा है। मेरे रबा रबा मुझे सजदा मुकम्मल कर लेते हो ताकि मैं क़यामत के दिन अपने अल्लाह के सामने सुरखुरू रूप में शहादत के वक्त भी तू रब का सजदा दिया है। हम आते कि चंद बोरियों के लिए वजारों को सजदा करते हैं, जब हम गलत जो है हमारा जमीन जो है नाकारा हो चुका है, हमारी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, हम इंसान रहे नहीं हैं। जब हम इंसान नहीं रहे तब इंसान को क्या पहचानेंगे कौन इंसान? मुसलमान बनने के लिए बेहतरीन इंसान बनने के लिए तो अपनी ख्वाहिशों को आपको दबाना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ेगा, फाके बर्दाश्त करने पड़ेंगे गैरत को बचाने के लिए। एक गैरत के लिए हर चीज कुर्बान करनी पड़ेगी, मगर एक गैरत को बचाने के लिए हर सब चीज कुर्बान करना पड़ेगा। हम सारा दिन क्या करते हैं, क्यों बुलाते हो? इन मीटिंगों का क्या फायदा है? बोलो हमारा शऊर कहाँ गया है? हम किधर जाकर बैठे? क्या हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं? क्या हम माधव परस्ती की तरफ जा रहे हैं? और हम बोलते हैं मोतबर है, छोटा बड़े का एहतराम नहीं करता। मैं मोतबर हूँ, अभी इसकी उम्र खत्म हो गई। बड़ा छोटे से मोहब्बत नहीं करता क्योंकि ये मुझसे छोटा है, इसे मैं मोहब्बत नहीं करूँगा। बड़ा मेहरबानी इंसानियत को बचाओ। वो सियासी जमात के लोगों और मजहबी जमात के लोगों मुसलमानों को ताबूत फराहम करो, ये तो फराहम बनता है। मेरा पैगाम है हम तक मुसलमानों को बचाओ, इस मोहम्मद की उम्मत को बचाओ, इसको कत्ल न करो ताकि ये कलमा जो ला इल्ला इल्लल्लाह गूंज रहा है पूरी दुनिया कर, इसको चलने दो, इसको मत मुकाओ। इसके मुकाने से तुम मुक जाएगा, न तुम्हारी ये जहाज संभलेगा न वो जहाज संभलेगा। इन अल्फाज के साथ मैं अपने मौजूद मेहमान शुक्रिया अदा करता हूँ और मौजूद का बड़ा मेहरबानी। सबसे बड़ा हमारे में यह है कि मुसलमान बने, हम इंसानियत को बचाने के लिए हुसैनी परचम को थाम लें, हम इंसानियत को बचाने के लिए मोहम्मद के जो भी सुन्नतें हैं उस पर कायम रहने की कोशिश करें। इसके साथ वसलाम।